हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आंशी अब तक खुद को संभाल कर रख रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने शिव की बात सुनी, उसकी आंखों से आंसू बह गए। इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता था वो एक क्रिमिनल है। ठीक वैसे ही आप एक सीक्रेट एजेंट हो और आपने मुझे नहीं बताया। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। आप इन सब में मेरी गलती क्यों निकाल रहे हो? आंशी रोते हुए बोली, तुम्हारी गलती ये है कि वो क्रिमिनल अब तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। उसने हमारी एक एजेंट को बंदी बना रखा है और साथ ही ये धमकी दे रहा है कि हमने तुम्हें नहीं भेजा तो वो उसे मार डालेगा। तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान चली जाएगी और न जाने कितनों की जान गई है। शिव की बात सुनकर आंशी को जाने अनजाने हैरी, प्रिंस और सृष्टि की याद आ गई। उन तीनों की जान भी विधिक ने आंशी के चक्कर में ही ली थी। ठीक है, आपको आपकी एजेंट मिल जाएगी और मेरी वजह से अब और किसी की जान नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे उसके पास जाना होगा। ठीक है, आप रहिए अपनी दुनिया में खुश, सबका भला कीजिए, मैं रह लूंगी हमेशा की तरह फिर से अकेली। आंशी वहां से रोते हुए जाने लगी, तभी वो अमन की चेस्ट से टकरा गई। अमन बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसने चेहरा उठाकर अमन की तरफ लाचारी से देखा। आंशी ने अपना चेहरा अमन के कंधे पर रख लिया, वो रो रही थी। उसे रोता देख अमन ने मिस्टर जिंदल से कहा, मुझे लगा था आप दोनों बात करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको तो ऐसा कुछ करना ही नहीं था, आप तो इसे ही ब्लेम करने पर आ गए। क्या आपको कभी भी खुद की गलती नहीं दिखाई देती? अमन के चेहरे पर गुस्सा था। हाँ, मेरी गलती थी कि मैंने इसे खुद से दूर भेजा, पर वो सब इसकी सेफ्टी के लिए था। शिव जिंदल ने भी उसे गुस्से में जवाब दिया, एक 11 साल की बच्ची को आप ये नहीं समझा सकते हो कि कौन सी चीज उसकी सेफ्टी के लिए है या कौन सी उसके नुकसान के लिए। 12 साल पहले आपने जो भी डिसीजन लिया होगा वो इसके लिए सही होगा, लेकिन अब जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। अमन ने जवाब दिया, 12 साल पहले ये बच्ची थी लेकिन अब नहीं है। जब ये विभिक राणा से मिली, उसके साथ रिलेशन बनाया, तब ये बात ये अच्छे से समझती होगी कि उस जैसे इंसान के साथ रहने का क्या नतीजा हो सकता है। ठीक है, हुआ होगा सब अनजाने में, पर अब जब मैं इसे यहाँ से भेजना चाहता था तब ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? अगर ये यहाँ नहीं आती तो चीज़ें नहीं बिगड़ती। शिव जिंदल ने कहा, नहीं, आंशी यहाँ नहीं होती तो चीज़ें आज भी उतनी ही बिगड़ती। विधिक यहाँ आंशी के पीछे नहीं बम ब्लास्ट करवाने के लिए आया है। अनफॉर्चुनेटली उसे आंशी यहाँ मिल गई तो वो यहाँ से नहीं जा रहा। इन सब में इसकी कोई गलती नहीं है, सो आगे से मेरी वाइफ पर कोई भी सवाल उठने से पहले ठीक से सोच लीजिएगा। इसे रुलाने का हक मैं किसी को नहीं देने वाला, अमन ने सख्त शब्दों में कहा और आंशी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। पहले तो वो आंशी को अकेले ही घर भेजने वाला था, पर अब वो खुद उसके साथ घर जा रहा था। उसने मिस्टर दत्त से बात कर ली थी। दोनों साथ में अमन के घर जाने के लिए निकल गए। अमन गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि आंशी उसके पास वाली सीट पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी उन्हें फेस करना सही नहीं है, फिर क्या जरूरत थी खाना लेकर आने की? तुम्हें थोड़ा मैच्योर होना होगा आंशी, अमन गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। आंशी ने कुछ देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो बोली, क्या मैं विधिक के पास चली जाऊंगी तो ये सब यहीं रुक जाएगा? आंशी की बात सुनकर अमन ने गाड़ी का ब्रेक लगाया। गाड़ी रुकते ही आंशी ने अमन की तरफ देखा, गलती से भी इसके बारे में सोचना भी मत, चाहे कोई कुछ भी कहे, अमन ने जवाब में कहा। उसने दिव्याना को किडनैप कर लिया है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है। अब तक तो उसने दिव्याना को बहुत टॉर्चर किया होगा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम विधिक को अच्छे से जानती हो तो मैं भी दिव्याना के हर मूव से वाकिफ हो। अब तक वो वहाँ सही सलामत टिकी हुई है, इसका मतलब कि उसने विधिक से डील कर ली है। जानती हो, वो हमारी काबिल एजेंट में से एक है। अगर उसने बगावत की होती तो विधिक उसे दो दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख पाता। ऐसे में तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। बोलते हुए अमन ने आंशी के चेहरे से बाल साइड किया और उसके आंसू पहुँचे। आंशी ने हाँ में सिर हिलाया। अमन ने गाड़ी वापस स्टार्ट की और फिर वहाँ से दोनों घर को आ गए। वहीं दूसरी तरफ एंड्रयू को मारने के बाद विधिक घर वापस आ गया था। उसे एंड्रयू को मारने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो काफी आराम से अपने रूटीन फॉलो कर रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। रात को डिनर के लिए स्पेशली विधिक ही खाना बना रहा था। खाना बनने के बाद उसने दिव्याना को आवाज़ लगाई, चलो आ जाओ, साथ में खाना खाते हैं, नकली शिवांगी। अब ये क्या है, तुम मेरा नाम जानते हो, फिर मुझे नकली शिवांगी कहकर क्यों बुला रहे हो? दिव्याना ने तेज आवाज में पूछा। मुझे तुम्हारा नाम अच्छा नहीं लगा, शिवांगी नाम ठीक है, पर तुम शिवांगी नहीं हो तो नकली शिवांगी ही सही। आज के दिन तुम फिर लकी रहने वाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। विधिक डाइनिंग टेबल पर बैठा था, उसने खाना खाना शुरू कर दिया था जबकि दिव्याना अब तक आई ही नहीं थी। दिव्याना बाहर आई और उसे खाते हुए देखा तो कहा, थोड़े बहुत तो टेबल मैनर्स फॉलो कर लेते तो मेरा वेट कर सकते थे। पहले खुद को उस काबिल बनाओ कि विधिक राणा तुम्हारा वेट करे। उसकी बात सुनकर दिव्याना ने आंखें घुमाई और वो चेयर पर बैठ गई। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद दिव्याना ने कहा, वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने पार्टी की प्रेपरेशन कर दी है, तुम बस पार्टी की तैयारी करो। समझो हो गया, दो दिन बाद की डेट लॉक कर लो, बस तब तक मुझे मेरी बटरफ्लाई मिल जाए तो हम दोनों साथ में अपने घर जा सकते हैं। तुम उसको फिर से पेरिस ले जाने का सोच रहे हो? दिव्याना ने कैजुअली पूछा। मैंने अपने घर का नाम लिया है ना, ना कि पेरिस का। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, विधिक ने जवाब दिया और प्लेट वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद दिव्याना के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। मतलब इसका घर पेरिस में भी नहीं है? आई विश ये अपने वादे पर टिका रहे और आंशी को मिलने के बाद वो सब काम छोड़ दे, तो मैं अपनी लाइफ में आराम से अमन के साथ सेटल हो सकती हूँ। और रही बात लावण्या की, तो उसे अपने रास्ते से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसे यहाँ से हटाने के लिए प्रमोशन मुझे वैसे ही मिल जाएगा, बस जैसा मैंने प्लान किया है सब वैसा ही हो। दिव्याना भी सोने के लिए जा चुकी थी। विधिक की तरह वो भी अब अपने मुकाम को पाने में ज्यादा दूर नहीं थी।